हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत कार्यक्रम में। भगवान तीसरे ही अध्याय में अर्जुन को ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि अर्जुन जो कि प्रथम अध्याय में भ्रमित हुए थे और अब धीरे धीरे जो उनका कर्तव्य होना चाहिए उसका जो ज्ञान अर्जुन को मिल रहा है वो अर्जुन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिन भगवान के साथ अर्जुन ने इतना समय बिताया युद्ध से पहले, कि युद्ध स्थल पर भगवान के श्रीमुख से वो ऐसा ज्ञान प्राप्त करेंगे। यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्तत्तद् एव इतरः जनः, कि जो जन हैं इतर जन वो श्रेष्ठों के आचरणों का पालन करते हैं। और पिछली बार हमने जो अंतिम पाठ लिया था श्रेष्ठ और आचार्य, या अंग्रेजी में जिसको लीडर कहते हैं, कि उनकी परिभाषा क्या है। लीडर इज वन हु इज लॉयल, एग्जेम्पलरी, एकोमोडेटिंग, डिपेंडेबल, इक्विपॉइज्ड एंड रिस्पेक्टफुल। मैं जैसे बता रहा था कि हाल ही में मैं जब चेन्नई से मुंबई आया तो फ्लाइट में जो छोटी सी गीता की क्लास हुई, क्योंकि ये श्लोक इतना फ्रेश अपने गीतामृत कार्यक्रम में चल रहा था तो इसलिए इस श्लोक को कोट करते हुए जब मैंने कुछ सिद्धांत प्रस्थापित किए तो एक प्रश्न एक पैसेंजर ने पूछा, किनके चरण छूने चाहिए, कौन हैं जिनके चरण छूने लायक होते हैं। हमने कहा चरण उनके छूने लायक होते हैं जिनके चरणों की शोभा उनके आचरणों से होती है। जैसे कि भगवान ने क्या बताया, आचार्य, श्रेष्ठ और आचार्य। तो जो नेता, जो लीडर, तो एक उदाहरण मैंने दिया कि नेता या लीडर को कैसे निस्वार्थ होना चाहिए सबसे पहले। तो जब हम एयरफोर्स में थे तो हमको ये एक इंसिडेंट सुनाया गया था कि एक बार पायलट ने अनाउंस किया कि प्लेन में गड़बड़ी है और हमारे पास चार टोटल प्लेन में लोग हैं पायलट को मिला के और तीन पैराशूट है। अभी देखिए कि कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, तो उस हिसाब से पैराशूट इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि प्लेन तो क्रैश होने वाला है, हम चार हैं और पैराशूट तीन। तो चार कौन थे, एक पायलट था, एक नेता, एक स्कूल का प्रिंसिपल था और एक स्कूल का विद्यार्थी। तो सबसे पहले नेताजी पैराशूट उठाकर कूद गए कि भाई मैं सबसे ज्यादा जरूरी हूं देश के लिए। फिर जो प्रिंसिपल था वो उसने एक पैराशूट उठाया और वो कूद गया कि भाई मैं जरूरी हूं। और फिर पायलट वो उस छोटे से बालक को देखते हुए कहा कि भाई मैंने तो अपनी आधी जिंदगी जी ली है और तुम्हारा भविष्य बाकी है, तुम्हारी पूरी जिंदगी बाकी है, तुम ले लो ये आखिरी पैराशूट और तुम कूद जाओ। तो विद्यार्थी ने पायलट से कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैराशूट हम दोनों के लिए, क्योंकि नेताजी घाई घाई में मेरा स्कूल का बस्ता उठा के कूद गया। लीडर ये नहीं होता कि जरूरत आने पर जो असली रंग है उसका असली रंग इस प्रकार से दिखाए। तो पिछले श्लोक में भगवान ने ये जो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्थापित किया कि एक श्रेष्ठ और एक आचार्य क्या जिम्मेदारी है, क्या उत्तरदायित्व है। तो मानो अर्जुन अब इतना हैवी डोज जो पिछले श्लोक का, जिसको समझने के लिए हमको 3 सिटिंग लेनी पड़ी उस श्लोक को समझने के लिए, फिर भी पता नहीं कितने हम समझे होंगे। तो इतना हैवी डोज एक श्लोक में जो भगवान ने अर्जुन को दिया, तो मानो अर्जुन भगवान की ओर देखते हुए पूछ रहे हैं कि आपने जो श्रेष्ठ और आचार्यों का उदाहरण दिया और उनकी जिम्मेदारी बताई, उनका उत्तरदायित्व बताया, परंतु मेरे लिए, मेरे सामने सबसे श्रेष्ठ तो आप ही हैं। इस पूरी रणभूमि में यदि मैं किसी को श्रेष्ठ मानता हूं तो वो हैं आप। क्यों? क्योंकि भगवान ने अभी ये जो ज्ञान देना प्रारंभ किया अर्जुन को भगवत गीता का, तो ये केवल श्रवण करने के पश्चात अर्जुन के मन में भगवान के प्रति जो आदर सत्कार पैदा हुआ, और भगवान को जब अर्जुन जो सखा मानते थे अब श्रेष्ठ मानने लगे हैं, एक आचार्य मानने लगे हैं, तो भगवान अर्जुन की ओर देखते हुए, अर्जुन भगवान की ओर देखते हुए अब ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तब फिर भगवान अब अर्जुन को अगले श्लोक में अपने स्वयं का उदाहरण देते हुए कि मैं केवल भगवद गीता सुनाने के लिए नहीं यहां पर अवतरित हुआ हूं, मैंने कैसे इस भगवद गीता का सिद्धांत भी अपने व्यक्तिगत जीवन में पालन किया है ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। और वो है हमारे आज का श्लोक, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। तो यहां सबसे पहले भगवान बता रहे हैं, अर्जुन को पार्थ इस नाम से उल्लेख कर रहे हैं। हे पार्थ, मेरे लिए कोई कर्तव्य निर्धारित नहीं है। सबसे पहले तो कोई जिम्मेदारी मेरे लिए निर्धारित नहीं है, कोई उत्तरदायित्व मेरे लिए निर्धारित नहीं है, परंतु फिर भी और त्रिषु लोकेषु, पूरे 3 लोकों में, ये नहीं कि केवल यहां कुरुक्षेत्र में या हस्तिनापुर में, 3 लोकों में कोई कर्तव्य निर्धारित नहीं, परंतु फिर भी मुझे ना तो किसी से कुछ पाना है, ना मुझे कोई आवश्यकता है किसी की, इसके बावजूद मैं तत्पर रहता हूं अपने नियत कर्म करने में। तब फिर अर्जुन तुम्हारा क्या कहना, तब फिर अर्जुन किसी और का क्या कहना। तो यह है आज का श्लोक, हे प्रथा पुत्र, 3 लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। बहुत ही विशेष गुण है भगवान का कि यहां पर एक ऐसे व्यक्ति, भगवान श्री कृष्ण के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसे किसी भी चीज का अभाव न हो, और किसी भी चीज की आवश्यकता न हो, और इसके बावजूद जो कर्म करता रहे। क्योंकि भगवान ने गीता में भी क्या कहा है, जन्म कर्म चमे दिव्यम, कि उनका जन्म और उनके कर्म दोनों के विषय में भगवान कहें, लेकिन दोनों दिव्य हैं। तो जब हम कर्तव्य कर्म या नियत कर्म की चर्चा कर रहे हैं, तो हमने इसकी व्याख्या पहले भी ली है कि कर्म की परिभाषा क्या है शास्त्रों के अनुसार। संक्षिप्त रूप में कर्म की परिभाषा ये दी गई है, जो हम लोग सब लगे हुए हैं कर्मों में। तो हमारे जो कर्म हैं, हमारे कर्मों की परिभाषा ये है, अपूर्णस्य निज पूर्तार्थे चेष्टिता इति कर्म, कि जब हम चेष्टा करते हैं हमारी अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए, तो वो हमारी जो चेष्टा, उसको कहा गया है कर्म, उसको कहा गया है हमारे नियत कर्म। अब यहां पर भगवान ने जो आज के श्लोक में अपने विषय में कहा है और कर्तव्य के विषय में कहा है, तो अपूर्णता जो कर्म की परिभाषा हमने अभी सुनी, तो अपूर्णता यहां पर भगवान के अनुसार हमारे अंदर दो प्रकार की। एक अपूर्णता कौन सी है, अभाव, हमारे अंदर जिसको कहते हैं वी आर इनकम्प्लीट, डिफेक्टिव। ये जो पूरा हमारा मनुष्य शरीर है डिफेक्टिव पीस है, इसमें बाय डिफॉल्ट डिफेक्ट्स हैं। जैसे हमने चर्चा की थी 4 डिफेक्ट्स, वी कमिट मिस्टेक्स, इम्परफेक्ट सेंसेस, यू गेट इल्यूजन एंड चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो डिफेक्टिव पीस, सब ये शरीर इस प्रकार से कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बोल सकते हैं। तो एक तो है अभाव, और दूसरी अपूर्णता, हम अब इस अभाव युक्त शरीर के साथ आवश्यकता जो पैदा करते हैं, अर्थात दूसरी भाषा में जो अभाव के साथ हम पैदा हुए हैं वो है प्राकृतिक अपूर्णता। इट इज नेचुरल इनकम्प्लीटनेस विद इन अस। जैसे कि हम भारत में पैदा हुए तो एक रंग रूप साधारणतः भारतीयों का होता है। कैसा है हमारा रंग रूप, जैसे कोई पकोड़ा अच्छे से सिका होता है ना, ये बताया गया जब भगवान योनियों की उत्पत्ति कर रहे थे तो कढ़ाई में सब योनियों को पका रहे थे पकोड़ों की तरह, तो सबसे पहले जले हुए निकले तो अफ्रीका में गए हुए। फिर जब भगवान ने वापस पकोड़ों को डाला तो वो कच्चे निकले एकदम गोरे गोरे, तो अमेरिका यूरोप के। फिर जब भगवान ने डाला तो एकदम परफेक्ट पकोड़े निकले, वो भारतीय। तो हम जो भारत में पैदा हुए तो हमारा एक प्रकार का रंग रूप, चाहे कितनी भी क्रीम लोशन लगा लो यहां वहां, सब गोरे करने के लिए ट्राई करते रहते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड हमारा कॉम्प्लेक्शन रहता है। और जो दूसरे देश में पैदा हुए उनको वैसा कॉम्प्लेक्शन रहता है। तो अब ये एक, अब उनको वो अभाव लगता है। आप अगर पाश्चात्य देश में जाओ तो वो पक गए हैं सब गोरे गोरे देख देख कर, तो वो धूप में बैठ बैठ कर अपने आप को काला करते हैं। एक हमारे सन्यासी आए थे, वो मुझे बोल रहे थे कि अगर आप अमेरिका जाओगे तो पीपल विल एनवी यू बिकॉज यू हैव सच अ नाइस टैन। वहां पे लोग धूप में बैठ बैठ कर वो गोरापन कम करना चाहते हैं, और यहां पर क्रीम लगा लगा कर गोरा बनना चाहते हैं। ये लोशन घिसो, ये साबुन रगड़ो। तो ये प्राकृतिक अभाव है, और ऐसे कितने हमारे प्राकृतिक अभाव हैं। परंतु ये केवल नहीं था कि हम मनुष्यों ने अब कृत्रिम रूप से, कृत्रिम का अर्थ क्या, आर्टिफिशियली अपूर्णता पैदा शुरू कर दी। जैसे कुछ साल पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि उसके अंदर, उस आर्टिकल के अंदर बताया गया था कि कैसे हम मनुष्य जो हैं कई बार बिना बुद्धि के जब कुछ कार्य करते हैं तो उसके परिणाम कितने घातक होते हैं। ये आर्टिकल था, तो उसमें एग्जाम्पल दिया था महाराष्ट्र इस राज्य का। तो एग्जाम्पल ये था कि कुछ साल पहले जब ये मल्टीनेशनल कंपनीज आई महाराष्ट्र में, अभी भी बहुत से आने के प्रयास कर रहे हैं, तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज स्पेशली कोक और पेप्सी, तो जब कोक और पेप्सी ये महाराष्ट्र में ये कंपनीज आई, तो अब इसके जो कस्टमर जो बढ़ने लगे, तो प्रोडक्शन बढ़ाना था तो प्रोडक्शन तो यहीं कर होगा ना उनका, तो यहां पर लोकल प्रोडक्शन, और उसके लिए मैक्सिमम उनको चीनी शक्कर की आवश्यकता पड़ती। उसमें कुछ था स्पेसिफिकेशन कि एक कोक का जो कैन आता है कितना, 250 ml इत्यादि का, तो उसके लिए कितनी शक्कर इस्तेमाल करते हैं वो लोग, बहुत मात्रा में शक्कर इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो अब शक्कर का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि कोक पेप्सी का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो शुगर इंडस्ट्रीज, तो फिर शुगर इंडस्ट्रीज को उन्होंने बढ़ा दिया महाराष्ट्र में। आप ध्यान में रखिए कि कैसे एक के बाद एक ये जो अपूर्णता कृत्रिम रूप से हमने बढ़ाई। तो कोक पेप्सी में शक्कर डालने के लिए शुगर इंडस्ट्रीज बढ़ाई, जब शुगर इंडस्ट्रीज बढ़ी तो जो शुगर उत्पादन हो रहा था इन इंडस्ट्रीज में, तो जो मोलासेस होता है, जो उसका रेसिड्यू बचता है, तो अब उसका क्या करें, उसको ऐसे क्यों फेंके। हम भारतीयों की मेंटालिटी क्या है, कोई भी चीज नहीं फेंकने का, कि अगर टूथब्रश खराब हो जाए तो उसको भी पजामे में नाड़ा डालने के लिए यूज कर सकते हैं, बाद में काट के उसका आगे का भाग काट के, हाँ ऐसा करते हैं कि उसको भी फेंकना क्यों, कि पजामे में नाड़ा डालने के लिए उसको आगे का भाग काट के उसको यूज कर सकते हैं। और पजामा भी काम ना आए तो उसके भी दो टांगे काट के तकिए का कवर बना लेते हैं, वो लंबे लंबे तकिए होते हैं ना, तो लंबे वो लंबे लंबे तकियों का कवर पजामा के वो टांगे काट काट कर बना लेते हैं। फिर आदमी आप जाकर उनके घर पे बैठो तो उनके टांगों पर बैठे हैं आप। तो कोई भी चीज वेस्ट नहीं करते भारत में। तो अब ये शुगर इंडस्ट्रीज में जो ये मोलासेस का ये जो रेसिड्यू इतना उत्पादन इसका होने लगा शक्कर के साथ साथ, तो इसका क्या करें, तो फिर चलो इसकी दारू बनाते हैं। तो फिर उसकी दारू बनाना शुरू किया। अब जब दारू इतना उत्पादन होने लगा तो भाई उसके तो कस्टमर कोक पेप्सी से ज्यादा हो गए, है ना। ओरिजिनल प्लान क्या था कि कोक पेप्सी के कस्टमर के लिए हमको शुगर उत्पादन करना है, और यहां पर अभी दारू के कस्टमर कोक पेप्सी से ज्यादा होने लगे। तो जब दारू के कस्टमर बढ़े तो इतनी दारू जब बिकने लगी, इतनी दारू लोग पीने लगे, तो फिर कुछ सालों बाद क्या देखा गया कि उनका सारा लिवर सड़ने लगा, अंदर लिवर सड़ने लगा, बीमार होने लगे। तो अब देखा कि बीमार होने लगे तो जो अस्पताल हैं महाराष्ट्र के, वो अस्पताल में जगह कम पड़ने लगी इन मरीजों के लिए, तो फिर नए अस्पताल खोलो। ध्यान में रखना कहां से शुरू हुआ है, तो श्रृंखला। अब इनके लिए नए अस्पताल खोलो, तो नए अस्पताल इनके लिए खोले, अब नए अस्पताल खोले लेकिन डॉक्टर कम पड़ रहे हैं, अस्पताल में डॉक्टर चाहिए ना, खाली ऐसे घूमने थोड़ी लोग आएंगे उधर। तो फिर डॉक्टर चाहिए, तो फिर डॉक्टर कहां उत्पादन होंगे? मेडिकल कॉलेज में। तो फिर नए मेडिकल कॉलेज खोलो। अब देखो इसकी शुरुआत कहां से हुई, कोक पेप्सी पीना है लोगों को, वहां से शुरुआत हुई। और एंड कितना बड़ा साम्राज्य इसके अंदर खड़ा किया गया, और इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेस। इसको हम क्या बोलते हैं कि कितना प्रोग्रेस हो गया, देखो कितनी मेडिकल कॉलेजेस खुल गए। अरे मरीज बढ़ रहे हैं इसलिए कॉलेजेस खुल रहे हैं, डॉक्टर इतने बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि मरीज बढ़ रहे हैं। मरीज क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने अनावश्यक चीजों को आवश्यक बनाया कृत्रिम तरीके से। तो अब देखिए पहले से क्या हमारे अंदर अपूर्णता कम थी कि हमने ऐसे ऐसे कर्म उत्पादन किए कि हमारी अपूर्णता को हम और बढ़ाएं। इसलिए जो आप लोग देखोगे कि आजकल लोग इतने भयावह कर्मों में लगे हुए हैं, यहां पर भगवान और जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि हम समझ लें कि हमारी वास्तविक अपूर्णता क्या है, तो ये जो चेष्टा हम जिसमें लगे हुए हैं इतने बड़े बड़े भारी भरकम कर्मों में, कि वो सारे उनका सारा जो ग्राफ है फीवर वो कम हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर हमारे शास्त्र चार प्रकार की अपूर्णता बताते हैं, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर और आत्मा के स्तर पर। यदि हम हमारी अपूर्णता आत्मा के स्तर पर समझ लें, तो जो हमने मनुष्यों ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा है शरीर मन और बुद्धि की अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए, तो समझ में आएगा अरे भाई ये सब तो नश्वर है, ये सब तो एक ना एक दिन खत्म ही होने वाला है। चाहे कितने भी कोक पेप्सी डाल लो इस शरीर के अंदर, चाहे कितनी शक्कर अंदर डाल लो, ये एक ना एक दिन खत्म होने वाला। और वास्तविक अपूर्णता हमारी क्या है? आत्मा की। तो क्यों प्राकृतिक रूप से हमें अपूर्ण बनाया गया है? क्योंकि फिर हम किसके विषय में चेष्टा करें कि जो वास्तविक पूर्णता हमें संतुष्ट कर पाएगी, और वह है आत्मा की पूर्णता, हम उसके लिए चेष्टा करें। इसलिए हमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से अपूर्ण बनाया है, ये समझना आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि कितना कठोर परिश्रम आजकल मनुष्यों को करना पड़ता है, और किस लिए? जैसे लोग कहते हैं पापी पेट का सवाल, अथक परिश्रम। और शास्त्रों में इस अथक परिश्रम को, उपनिषद में इसे कहा गया है पवर्ग, जिसमें हम रहते हैं, ये परिश्रम युक्त जो संसार जिसमें हम रहते हैं उसको कहा गया है पवर्ग। तो आजकल हमको लग रहा होगा कि कितना ट्रेन से प्रेम कर रहे हैं ये लोग, छोड़ ही नहीं रहे ट्रेन को। तो ये जो कृत्रिम रूप से हमने उत्पादन किया है अथक परिश्रम का जीवन, जिसको शास्त्रों में क्या कहा गया है? पवर्ग। तो पवर्ग श्रील प्रभुपाद ने इसकी व्याख्या की है, ये पांच अक्षरों से बना है, फाइव सिलेबल्स। तो पांच सिलेबल्स क्या है? प, फ, ब, भ और म। तो प का अर्थ है परिश्रम, फ जब परिश्रम के पश्चात मुंह से फेन निकलता है, जैसे आपने कई बैलों को देखा होगा परिश्रम करने के पश्चात उनके मुंह से फेन निकलता है, और उसके पश्चात ब बंधन, कि इतना परिश्रम किया, इतना फेन निकाला और मिला क्या? बंधन। कौन सा बंधन? भव बंधन। और बंधन के पश्चात फिर भय, कि जब बंधन में जीव चला जाता है तो उसके अंदर भय, और किस चीज का भय? मृत्यु। तो श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया ऊंट का। ऊंट जो है दूर दूर तक उसको पानी नहीं मिलता, रेगिस्तान का ये प्राणी है, दूर दूर तक रेगिस्तान में जब उसको पानी नहीं मिलता तो ऊंट विवश होकर कांटों को खाता है। तो जब वो कांटों को अब सोचिए, कांटों को खाना, हमारे पैरों में भी नीचे चुभ जाए तो हम सबसे पहले उसको निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊंट कांटों को मुंह में चबाकर खाता है। हम कल्पना में नहीं कर सकते कि कांटों की कोई सब्जी बना के खाएगा। तो ऊंट जब कांटों को खाता है तो पूरे मुंह से खून निकलता है उसके। तो वो खून जब उसका निकलता है और वो खून जब वो पीता है, खुद का ही खून पी रहा है जो कांटों के वजह से कट कर अंदर से जो खून निकला है उसको जब पीता है तो उसको लगता है कि मेरी प्यास बुझ रही है। कितना अच्छा ड्रिंक है, कितना अच्छा बेवरेज है, मेरी प्यास बुझ रही है। तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि जो कृत्रिम रूप से इस भौतिक संसार में इस पवर्ग में फंसे हुए हैं उस ऊंट की तरह है, परिश्रम कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, और उस परिश्रम से उत्पादन क्या हो रहा है? कांटों को खाने के पश्चात अपने ही खून का, और अपने ही खून को पीने के पश्चात उनको संतुष्टि लग रही है कि मेरी प्यास बुझी। बहुत ग्राफिक एग्जाम्पल है कि यदि हमको प्यास लगी है और कोई हमारे ही नस से खून निकालकर हमको दे, पियो प्यास बुझाओ, क्या हम वो स्वीकार करेंगे? लेकिन किसी ना किसी तरीके से हम उसको कर रहे हैं। और आजकल हमको बोलने की जरूरत नहीं है कि कितना अथक परिश्रम कोई व्यक्ति कर रहा है, विशेष रूप से बड़े बड़े शहर नासिक में भी आजकल पूछा जाए कि भाई किस लिए, क्यों इतनी भागदौड़। तो कई बार लोगों के पास सही उत्तर भी नहीं होता कि क्यों वो इतना अथक परिश्रम कर रहे हैं। एक व्यक्ति बीमार हुआ तो उसने फोन कर अपनी पत्नी से कहा कि मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट फिक्स करना, मुझे सर्दी खांसी ये सब कुछ हो रहा। तो पत्नी ने फिक्स किया डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। तो उसने पूछा कौन से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट फिक्स किया? पत्नी ने कहा जानवरों के, वेटरिनरी डॉक्टर होता है ना। उन्होंने कहा जानवरों का डॉक्टर क्यों? जानवरों का डॉक्टर इसलिए क्योंकि सुबह तुम उठते हो, घोड़ों की तरह दौड़ते हो, जॉगिंग के लिए जब जाते हो घोड़ों की तरह तुम सुबह दौड़ते हो, ऑफिस में गधे की तरह काम करते हो, घर में आके बच्चों पर कुत्तों की तरह भौंकते हो, और रात में उल्लुओं की तरह जगते हो। तो जानवरों का डॉक्टर ही काम आएगा ना। पूरे दिन भर तो तुम्हारे कार्य घोड़े कुत्ते गधे उल्लू इनकी तरह ही हो रहे हैं। तो अब देखिए इतना अथक परिश्रम व्यक्ति कर रहा है, और मॉडर्न डे परिश्रम आपको लग रहा होगा ये फेन वेन नहीं निकल रहा। तो इस प्रकार का परिश्रम ऐसे ही एक ये ऑफिस का टॉयलेट है, ऐसे ही एक ऑफिस के टॉयलेट के दरवाजे के अंदर के साइड में लिखा हुआ था। बेचारा एक आदमी अंदर गया, पॉटी नहीं आ रही थी उसको, जोर से तो जोर लगा रहा था, तो लिखा हुआ था कि अरे इतना ही जोर अगर प्रोजेक्ट पर लगाता तो प्रमोशन हो जाता। तो ये मॉडर्न डे तरीका है पवर्ग, परिश्रम, फेन, बाकी इत्यादि का। अब भगवान श्री कृष्ण के विषय में जब हम वो जब इस भौतिक संसार में आकर कुछ कर्म करते हैं तो चैतन्य चरितामृत में भगवान श्री कृष्ण के तीन स्वरूप बताए हैं। द्वारका कृष्ण इनको चैतन्य चरितामृत में पूर्ण कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि द्वारका कृष्ण वो पूर्ण है, क्योंकि आप देखिए द्वारका कृष्ण वो द्वारकाधीश के रूप में एक क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे थे। फिर मथुरा के कृष्ण वो कहते हैं पूर्णतर, और वृंदावन के कृष्ण पूर्णतम, क्योंकि वृंदावन के जो कृष्ण हैं वो एक तो वृंदावन से कभी बाहर नहीं निकलते, वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, कि कभी वो वृंदावन से एक पद बाहर नहीं निकलते, और वृंदावन में जो उनकी लीलाएं होती हैं वो वृंदावन के बाहर के जो उनकी लीलाएं हैं उनसे बहुत भिन्न है, क्योंकि मथुरा और द्वारका में जो भगवान की लीलाएं, वो भगवान जो अपने मिशन को एस्टैब्लिश करने के लिए आए थे वो लीलाएं उन्होंने की, लेकिन वृंदावन की जो भगवान की लीला है वो केवल भगवान जो आज के श्लोक में बोल रहे हैं कि मैं अभाव और आवश्यकता से परे, इसलिए भगवान ने भी दिखा दिया कि मेरा पूर्णतम रूप वृंदावन में है, परंतु मैं वृंदावन के बाहर जाता हूं जहां पर मैं पूर्ण या पूर्णतर बनता हूं, किस लिए? लोगों को सिखाने के लिए, हमको सिखाने के लिए भगवान वृंदावन के बाहर आकर कौन से कृष्ण? यदुकुमार कृष्ण, वासुदेव कृष्ण बनकर, द्वारकाधीश कृष्ण, मथुराधीश कृष्ण बनकर हमें सिखाते हैं कि कैसे हम हमारी अपूर्णता को सही तरीके से पूर्ण करें। तो अब पूर्णतम कृष्ण को हम लें, तो पूर्णतम कृष्ण के विषय में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि उनकी ये दो व्याख्याएं हैं या ये दो गुण हैं, एक है आत्माराम होना और आप्तकाम। तो हमने इसी अध्याय के कुछ श्लोकों में से चर्चा की थी कि आत्माराम भगवान के भक्तों को भी कहा गया है, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनको भी आत्माराम कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो हर समय भगवान में ही रमण करते हैं, तो यहां पर जब भगवान के भक्तों को आत्माराम कहा जाता है तो वो इसलिए कहा जाता है कि उनकी आत्मा कौन है? भगवान। और उनको भी आप्त काम कहा जाता है क्योंकि उनकी कामना कौन है? भगवान। परंतु भगवान को यदि आत्माराम और आप्त काम कहा गया है, कौन से भगवान को? पूर्णतम कृष्ण को। तो हमारे आचार्य बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि भगवान कृष्ण के लिए कौन सी आत्मा है जिसकी में वो रमण करते हैं? राधा रानी। तो भगवान को जब आत्माराम कहा जाता है तो ये ध्यान में रखिए कि उसका तात्पर्य क्या है, वो भगवान जो कि श्रीमती राधा रानी में रमण करते हैं। और आप्त काम, अब प्रश्न ये है कि भगवान की कौन सी कामना हो सकती है, तो भगवान की ये कामनाएं बताई गई है। भगवान की कामनाएं हैं पूर्णतम कृष्ण की गौएं, गोप और गोपियां। तो रोज वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण पूर्णतम रूप को दर्शाते हैं श्रीमती राधा रानी के साथ संग कर, और गोप गौएं और गोपियों के साथ संग कर। तो आत्माराम और आप्त काम इसे पूरा करते हैं पूर्णतम कृष्ण। तो ये पूर्णतम कृष्ण अब अर्जुन को बोल रहे हैं त्रिषु लोकेषु किंचन, कि पूरे तीनों लोक में मेरे लिए कोई कर्तव्य निर्धारित नहीं है अर्जुन, कोई जिम्मेदारी, कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं है। तो कई बार लोगों को लगा, अरे भगवान के लिए कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं, भगवान भी अनएम्प्लॉयड है, भगवान के लिए भी कोई जॉब नहीं है, क्या भगवान जॉबलेस है? तो अब जो तीन लोक कौन से हैं, 14 लोक हैं कंप्लीट, और उन 14 लोकों में से डिवीजन हुआ है, अपर प्लैनेटरी सिस्टम, मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम और लोअर प्लैनेटरी सिस्टम। तो ये तीन लोकों का डिवीजन क्या है, स्वर्ग लोक, हम जो पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी लोक, और हमारे नीचे कौन से, ये पाताल लोक, जैसे सुतल, तल, रसातल, तलातल, ये सब नारकीय लोक, नरक लोक, ये सब नीचे है। तो भगवान कह रहे हैं त्रिषु लोकेषु किंचन। तो काफी हमने इसके ऊपर रिसर्च की कि ये जो तीनों लोक के विषय में भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं, तो कैसे भगवान ने तीनों लोकों में अपना स्वामित्व ये प्रस्थापित किया। तो यदि हम भगवान श्री कृष्ण को देखें कि उन्होंने स्वर्ग के ऊपर कैसे अपना स्वामित्व प्रस्थापित किया, तो घटना है नर नारायण ऋषि कि नर नारायण ऋषि जो कि भगवान के ही अवतार, और वो जब तपस्या कर रहे कहां, बद्रीनाथ, तो इंद्रदेव इनको लगा कि ये तपस्या कर रहे हैं, हर समय जो भी कोई तपस्या करता देवराज इंद्र को ये लगता है कि मेरे पद के लिए तपस्या कर रहा है, हो ना हो, मानो या न मानो, मेरे पद के लिए कर रहा है। तो जब देवराज इंद्र को लगा कि ये इतनी तपस्या कर रहे हैं नर नारायण ऋषि, तो उन्होंने किसको भेजा, तपस्या इनकी भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव अपने पूरे अप्सरा के एंटोराज के साथ गए वहां पर इनकी, इनका ध्यान भंग करने के लिए। तो जब कामदेव शुरू किए, सब अप्सराओं को कहे कि ध्यान भंग करो, चलो, तो नर नारायण ऋषि नारायण वो आंख खोले और वो हंसने लगे, और उन्होंने कामदेव को कहा कि आप लोगों को इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला आप लोग जो कर रहे हैं। उल्टा उन्होंने अपनी जंघा से एक अप्सरा उत्पन्न की जिसका नाम हुआ उर्वशी, जो उनके उरु से पैदा हुई, उनकी जंघा से जो पैदा हुई उर्वशी, और फिर उस उर्वशी को कामदेव को कहा कि ये जाके देवराज इंद्र को मेरी तरफ से भेंट, और उसको बोलो कि चिंता करने कोई जरूरत नहीं, मैं उसके पद के लिए नहीं कर रहा हूं ये सब तपस्या। तो कामदेव शर्मा गए कि मैं जो अपना पूरी शक्ति लेकर आया था, ये उर्वशी, राधानाथ महाराज एक प्रवचन में बता रहे थे इसी पास्ट टाइम को सुनाते हुए कि जब नर नारायण ऋषि ने उर्वशी को पैदा कर कर दिया कामदेव और इंद्र को, तो इंद्र की सभा में जितनी अप्सराएं थी वो उर्वशी के सामने कॉकरोच की तरह दिखती थी, दे लुक्ड लाइक रोचेस, कॉकरोचेस इन फ्रंट ऑफ उर्वशी, इतनी सुंदर उर्वशी थी। और देवराज इंद्र जब उर्वशी, कामदेव वापस आए लौटे उर्वशी को लेकर और कहे कि ये गिफ्ट दिया उन्होंने, तो देवराज इंद्र शर्माने के बजाय एक्सेप्ट कर ली, क्या अरे अच्छा गिफ्ट मिला है फ्री में, वो भी उर्वशी जैसा। तो नर नारायण ऋषि के अवतार में भगवान ने ये स्थापित किया कि देवराज इंद्र जो कि सारे स्वर्ग लोकों के इंद्र हैं, देवों के राजा हैं, वो भी अपनी पूरी शक्ति से मेरे ऊपर स्वामित्व नहीं जमा सकते, बल्कि उनके इंद्रलोक में मैंने एक ऐसी अप्सरा भेजी है कि सभी लट्टू हैं अभी उसके ऊपर। तो भगवान ने कैसे वो स्वर्ग के स्वामी इस एक अपनी लीला से दर्शाया। फिर गोवर्धन लीला, वही इंद्र, फिर उनका इंद्र याग नहीं हुआ तो संवर तक बादल को भेज दिया विध्वंस करने के लिए वृंदावन को, और भगवान ने बिल्कुल जब संवर तक बादल आए तो भगवान ने ये नहीं कि अरे भाई अभी इंद्र से माफी मांगनी होगी कि मैंने भाव में ताव में आकर बोल दिया कि अरे भाई इंद्र याग बंद करो गोवर्धन की पूजा, नहीं, भगवान बिल्कुल भी इंद्र की ओर देखे भी नहीं और भगवान ने गोवर्धन धारण कर लिया और फिर इंद्र को समझ में आया। तो गोवर्धन लीला के थ्रू भगवान ने ये बताया कि कैसे वो वापस से देवराज इंद्र के स्वामी। अब कोई ये प्रश्न पूछे कि भाई इंद्र से ऊपर तो ब्रह्मा जी हैं, इंद्रलोक से ऊपर कौन सा लोक है? सत्यलोक, ब्रह्मलोक। तो क्या भगवान ने ब्रह्मलोक के ऊपर अपना स्वामित्व जमाया कभी या दिखाया? जरूर, ब्रह्म विमोहन लीला फिर से, कि ब्रह्मा जी भी भ्रमित हुए, और हम ये लीला बहुत बार सुने हैं। ब्रह्मा जी जब भ्रमित हुए तो ब्रह्मा जी ने किया क्या, जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा कि वो अपने ग्वाल सखाओं का जूठा खा रहे हैं और ब्रह्मा जी ये समझ नहीं पाए कि ये जूठा कैसे खा रहे हैं। हाल ही में हम दक्षिण भारत जब गए तो मैं और हमारे एक गुरु बंधु नित्यानंद प्रभु, वहां श्री वैष्णव संप्रदाय बहुत ही, वो लोग नियमों के कट्टर होते हैं, बहुत कट्टरता से नियम पालन करते हैं। तो वहां पर एक मठ में, श्री वैष्णव मठ में, क्योंकि हम लोग कांचीपुरम, मैं और नित्यानंद प्रभु थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे, तो एक मठ में नित्यानंद प्रभु ने पूछा कि यहाँ ब्राह्मणों के लिए भोजन प्रसाद मिलता है, क्योंकि वहां पर इमीडिएटली कोई भोजन प्रसाद की अरेंजमेंट नहीं थी। तो वो व्यक्ति, उसने कहा कि हम लोग ही ब्राह्मणों को यहाँ पर खिलाते, इसी आश्रम में आइए आप लोग, आइए। तो उन्होंने देखा कि, और मैंने पूछा कि इन्होंने कैसे पहचाना कि हम लोग ब्राह्मण है, जनेऊ इन्होंने तो दिखी नहीं होगी, तो इन्होंने कैसे पहचाना? तो नित्यानंद प्रभु कहे कि मेरी भाषा से इनको समझ में आ गया कि हम ब्राह्मण हैं। भाई भाई, कौन सी भाषा आपने ऐसी बोली, वो तो तमिल में बात कर रहे थे, तो कौन सी भाषा आपने ऐसी बोली कि इनको समझ में आ गया कि आप ब्राह्मण? तो उन्होंने कहा कि जैसे मैंने इनको पूछा कि पानी है क्या, तो पानी के बदले मैंने इनको पूछा तीर्थ है क्या, तो इस भाषा से इनको समझ में आ गया कि तीर्थ केवल वो ऐसी सुसंस्कृत भाषा ब्राह्मण ही बोलेगा, नहीं तो पूछेगा पानी है क्या, तो उससे इसको समझ में आ गया। मैंने कहा बहुत एडवांस्ड यहां पर इनका स्क्रीनिंग सिस्टम है। तो वो हमको अंदर लेकर गए, तो अब उन्होंने वो केले का पत्ता बिछाया और फिर जब उन्होंने सर्विंग किया, तो हम तो जनरली अपना प्रसाद कैसे लेते हैं, सर्विंग जैसे एक आइटम आ जाए तो हम तो अपना महाप्रसाद बोलकर शुरू कर देते हैं। तो नित्यानंद प्रभु बोले नहीं नहीं नहीं, अभी हम लोग इनके आश्रम में बैठे हैं तो इनके अनुसार आपको ये खाना होगा। अब इनके अनुसार कैसे खाते हैं? तो सबसे पहले वो जल लो और तीन बार वो जो केले का पत्ता है वो जल को तीन बार ऐसे करो और उसके बाद में थोड़ा सा जल लेकर उसका आचमन करो, और जो भी वो ग्लास वगैरह होगा वो केले के पत्ते को टच नहीं होना चाहिए। तो बहुत कट्टर नियम थे, जो भी साइड में ग्लास है वो केले के पत्ते को टच नहीं होना। मैंने कहा टच होने से क्या होगा? बोले कि बस वो मत पूछो क्या होगा। मैं जो भी लॉजिक तो बताओ कि अरे वो भी तो, ये केले का पत्ता भी मेरा जूठा ही है, वो ग्लास भी जूठा ही है। बोला नहीं। मैंने पूछा होगा क्या? बोला होगा क्या, नेक्स्ट सर्विंग नहीं मिलेगा। तो मैं वो ही याद कर रहा था कि यहां कि अब कलयुग में हम लोग हाल ही में 2012 में कांचीपुरम में एक आश्रम में गए, वहां पर खाने के इतने नियम बताए गए हमको कि शुरुआत कैसे करनी है और कौन सा आइटम कहां पर होना चाहिए। तो मैं वही सोच रहा था ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी क्यों नहीं भ्रमित होंगे, कि वो देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण एक तो उल्टे हाथ से खा रहे हैं, भगवान उल्टे हाथ से खा रहे थे, सोचिए कि एक कट्टर ब्राह्मण अगर ये सुने कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उल्टे हाथ से खा रहे हैं, तो उल्टे हाथ से भगवान खा रहे हैं और जूठा खा रहे हैं दूसरों का, और खाते समय बातचीत कर रहे हैं जो कि वो नियमों के विरुद्ध है, एकदम कट्टर नियमों के विरुद्ध है, खाते समय बातचीत नहीं। भगवान तो ठहाके मार मार कर बातें कर रहे थे सब ग्वाल सखाओं के साथ, तो ब्रह्मा जी क्यों नहीं भ्रमित होंगे? तो ब्रह्मा जी भ्रमित हुए तो फिर भी उनको लग रहा था कि भगवान तो शायद हैं ही है, क्योंकि सारे जो प्रूफ हैं वो इनके ही लिए हैं कि यही है भगवान, लेकिन ये जो आज जो कर रहे हैं ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बछड़ों को और जो ग्वाल बाल हैं उनको छिपा लिया। अब देखिए भगवान कैसे पूर्णतम है कि भगवान ब्रह्मा जी के पास गए नहीं याचना करने के लिए, ऐसा क्यों किया, मैं अभी ठीक से खाऊंगा वापस दे दूंगा, आपको खाली मेरे खाने से प्रॉब्लम हो रही है, अरे तो मैं ठीक से खाऊंगा, अगली बार खाऊंगा तो आप सामने मत आना बस, या मैं अंदर कमरे में खाऊंगा। भगवान ऐसा नहीं बोले, ब्रह्मा जी के पास गए भी नहीं, भगवान जानते थे ब्रह्मा जी की करतूत है, ब्रह्मा जी ने उत्पादन कर दिया अपने ही शरीर से बछड़ों का उत्पादन कर दिया, और एज इट इज बछड़े और जितने ग्वाल सखा थे, ये बताया गया है कि भगवान ने अब जो सेकेंड सेट बछड़ों का और सखाओं का पैदा किया अपने शरीर से, तो एग्जैक्टली जो एक एक बछड़ा था उसका क्या शेड था उसके शरीर का कलर का, वो शेड और वो बछड़ा कैसे चलता था, वो ग्वाल सखा उसके उसके क्या बॉडीली जेस्चर्स हुआ करते थे, उसके उसकी टोनिंग बोलने की, उसकी भाषा, सब कुछ एज इट इज भगवान ने, और वो भी कितने समय में, ये सब कॉपी हो गया, कॉपी पेस्ट विद इन सेकेंड्स मोमेंट्स, इतने सारे बछड़े इतने सारे ग्वाल सखा भगवान ने अपने शरीर से उत्पादन कर दी, और भगवान अपना खेलने लगे अपने, तो भगवान को कोई जरूरत नहीं पड़ी ब्रह्मा जी के पास जाकर वापस इनको बुलाने। और ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए एक मिनट के लिए, वापस इधर आए, देखा कि ये लोग यहां पर कैसे आ गए, तो ब्रह्मा जी अभी भी समझ में नहीं आया कि ये भगवान है, इन्होंने ही पैदा किया है। ब्रह्मा जी को लग रहा था कि वो वहां से गुफा से निकल के वापस आ रहे हैं, तो ब्रह्मा जी उधर जा रहे हैं देखने के लिए, वो तो उधर भी बैठे हैं, इधर आ रहे हैं इधर भी बैठे हैं, तो ब्रह्मा जी के चार सर और घूमने लगे, पहले थोड़ा बहुत भ्रमित हुए थे अब विमोहित, इसलिए ब्रह्म विमोहन। अच्छा इतना ही नहीं था, भगवान ने देखिए आगे क्या किया, भगवान ने ब्रह्मा जी को सबक सिखाने के लिए कि पहले तो अपने शरीर से बछड़ों को और ग्वाल सखाओं को पैदा किया, और फिर ब्रह्मा जी को दिखाया कि ये विष्णु हैं, तब ब्रह्मा जी ऐसे हो गए कि सक पका गए, और फिर ब्रह्मा जी क्षमा याचना मांगकर अब ब्रह्मा जी वापस ब्रह्मलोक जा रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक पहुंचने से पहले भगवान पहुंच गए ब्रह्मा जी का रूप लेकर, भगवान ब्रह्मा जी का रूप लेकर पहुंच गए और ब्रह्मलोक, क्योंकि ब्रह्मा जी कुछ समय के लिए ब्रह्मलोक के बाहर थे ना, वृंदावन वगैरह आए थे, तो सभी लोग वहां पर न्यूज थी कि ब्रह्मा जी कुछ समय के लिए बाहर गए ब्रह्मलोक से, तो जब अब भगवान ब्रह्मा जी का रूप लेके आए तो सभी लोगों ने सोचा कि ब्रह्मा जी लौट रहे हैं, तो उनका वेलकमिंग किया वापस से, गार्लन वार्लन पहना के उनको जो उनकी गद्दी थी वहां बिठाया, और फिर अब भगवान जो ब्रह्मा जी बने हुए सत्यलोक के निवासी को कहते हैं कि एक मेरा डुप्लीकेट घूम रहा है और वो आने का प्रयास करेगा, घुसने मत देना उसको। तो बोले आपका डुप्लीकेट? बोला हाँ एज इट इज, वो बहुरूपिया बना हुआ है, मेरा रूप लेके घूम रहा है वो और सबको बोल रहा है वो ब्रह्मा है। तो सभी तैयार हो गए, ऐसी हिम्मत किसी की, तो वो लोग सब गेट पे तैयार हो गए, देखते हैं कौन घुसने के कब, तो अभी असली ब्रह्मा जी आ रहे हैं, तो असली ब्रह्मा जी अभी पहले से ही हताश होके ये क्षमा याचना मांग के गिल्टी फील कर रहे, ग्लानी फील हो रही, और ये आ रहे अंदर, सभी लोग मार मार के यही है वो डुप्लीकेट जो अंदर हमारे ब्रह्मा जी बता रहे थे, मार मार के बाहर, अरे क्या करे तुम, हम जानते हैं कि तुम डुप्लीकेट हो, तुम असली नहीं हो, तुमने भेष बदल कर तुम हमारे असली ब्रह्मा जी को, तो मार मार के भगा दिया ब्रह्मा जी को बाहर। और ब्रह्मा जी अपने सत्यलोक के बाहर बैठे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं, कुछ नहीं। और फिर उनको समझ में आया उनकी दिव्य शक्ति से कि भगवान स्वयं ब्रह्मा जी का रूप ले। न केवल भगवान ने विस्तार किया बछड़ों का, न केवल विस्तार किया ग्वाल सखाओं का, बल्कि भगवान ने ब्रह्मा जी को भी अपने अंदर से उत्पादित किया और ब्रह्मा जी को दिखाया कि ओरिजिनली तुम आए कहां से थे, तुम मेरी नाभि से आए थे, मेरी बिल्ली मुझ पे म्याऊं कर रही है अभी, तो मैं अपनी वृंदावन लीला कर रहा हूं, मैं जो भी उल्टे हाथ से खाऊं, मैं सीधे हाथ से खाऊं, मैं जूठा खाऊं किसी का, तुम अपना सत्यलोक में पार्टी करो, तुमको क्या मतलब इधर आके, तुमको सत्यलोक बना के दिया है, वहां पर रहो ना चुपचाप। तो ब्रह्मा जी को समझ में, तो इस ब्रह्म विमोहन लीला से भगवान ने ब्रह्मा जी के ऊपर उनका स्वामित्व क्या है ये बताया। फिर पृथ्वी के स्वामी, ध्यान में रखिए, त्रिशु लोकेशु किंचन, ये पॉइंट चल रहा है हमारा। तो वराह भगवान उन्होंने भूमि देवी का जो उद्धार किया, भूमि देवी को हिरण्याक्ष ने गर्भोदक सागर में फेंक दिया था, पूरी हमारी पृथ्वी को गर्भोदक सागर में फेंक दिया था, और भूमि देवी पृथ्वी का उद्धार किया स्वयं भगवान ने वराह देव के रूप में। तो जो कोई नहीं कर पाया वो भगवान श्री विष्णु ने किया वराह देव के रूप में। तो इसके द्वारा भगवान ने पृथ्वी देवी के ऊपर या भूमि देवी के ऊपर अपना स्वामित्व ये दर्शाया। फिर पृथु महाराज के अवतार में जब भूमि देवी वो राक्षसों के प्रकोप के वजह से, विशेष रूप से वेण जो एक राक्षस था उसके प्रकोप के वजह से भूमि देवी ने सारे उत्पादन बंद कर दिए थे, धन धान्य के सारे उत्पादन बंद कर दिए थे, और पृथु महाराज ने आकर फिर दंड दिया भूमि देवी को कि मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं, मैं स्वयं साक्षात भगवान हूं। तो भूमि देवी फिर भगवान पृथु महाराज से घबराते हुए फिर उन्होंने सब कुछ दिया। तो यहां पर भी उन्होंने, भगवान ने भूमि देवी के ऊपर अपना स्वामित्व दिखाया। और द्वारका नगरी का निर्माण, अब यहां पर भगवान जब मथुरा से सभी मथुरावासी को द्वारका ले जाना चाहते थे, तो भगवान ने द्वारका का निर्माण एक रात में किया कि सारे मथुरावासी वो रात में सोए, सुबह जब उठे तो द्वारका में थे वो। और द्वारका नगरी भगवान ने ऐसी बनाई, और भगवान ने द्वारका नगरी में जो मेन उनका सुधर्मा महल, ये सुधर्मा महल जो भगवान का मेन द्वारकाधीश, भगवान का जो मेल सभागृह राज्य का जहां पर भगवान बैठा करते थे, तो ये सुधर्मा महल दिया किसने? इंद्र ने। तो भगवान ने जब द्वारका पूरी बनाई एक रात में, विश्वकर्मा को कहा कि, विश्वकर्मा कौन थे? वो आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियर विश्वकर्मा थे। और इंद्र उनको कहा कि भाई तुम्हारा सुधर्मा पैलेस लाओ यहां पर। अब इसके विषय में बताया गया है कि ये जो सुधर्मा पैलेस है महल, इसके अंदर कोई अगर प्रवेश भी करना चाहता है तो उसको कम से कम 100 राजसूय यज्ञ करने पड़ते हैं। केवल सुधर्मा महल के अंदर घुसने के लिए कितने? 100 राजसूय यज्ञ। हमें तो पता भी नहीं है राजसूय यज्ञ होता क्या है। तो ये सुधर्मा महल इंद्र का कितना हाईटेक था कि इसके अंदर कोई प्रवेश करे तो यदि वो प्यासा है तो प्यास बुझ जाती है उसकी, भूखा है तो भूख चली जाती है, यदि उसको गर्मी लग रही है तो ठंडा हो जाता उसके लिए, उसको यदि ठंड लग रही तो उसके लिए गर्म हो जाता, तो अभी देखिए, मान लो कि हम हमारा टेंपल हॉल अगर वैसा हो, किचन का कितना खर्चा बच जाएगा। तो ऐसी टेक्नोलॉजी थी सुधर्मा हॉल में, इंडिविजुअली जिसकी जो इच्छा है उस हिसाब से ये एडजस्ट होता था सुधर्मा महल। तो ये ऐसे चुटकियों में भगवान ने वहां से मंगवाया। तो द्वारकापुरी का जो निर्माण भगवान ने किया 16,108 पटरानियों के लिए इंडिविजुअल महल, हाँ, एक एक रानी के लिए एक एक महल द्वारकापुरी में। ऐसा नहीं कि अभी 16,108 रानियां आ गई तो अभी सबको एक एक चटाई दे दी कि भाई तू वो कोने में सो जाना, तुम्हें थोड़ा एडजस्ट कर लेना भैया, बाहर वरांडा भी कॉरिडोर में थोड़े लोग सो जाना। और ऐसा नहीं कि उनको उनको कुछ समय के लिए भाड़े पे कहीं पे रखा द्वारका के साइड में कहीं पे, कि अहमदाबाद वगैरह में भाड़े पे रखा और कि यहाँ पे भी बन रहा है, एक एक महल बन रहा है, एक एक बनेगा, एक एक को बुलाऊंगा मैं तुरंत। तो ये भगवान ने पृथ्वी पर उनका कैसे स्वामित्व वो दिखाया। अब पाताल के भी स्वामी भगवान, ये नहीं कि अरे ये तो सब नीचे के लोग हैं तो यहां पर क्यों भगवान अपना स्वामित्व दिखाना चाहते थे। तो यहां पर सांदीपनि मुनि ने जब गुरु दक्षिणा मांगी भगवान श्री कृष्ण से, क्या गुरु दक्षिणा, कि उनके जो पुत्र जो मर चुके थे और जो यमलोक में थे, तो यमलोक जाकर भगवान श्री कृष्ण सांदीपनि मुनि के पुत्र को छुड़वा कर लेकर आए। तो यहां पर भगवान ने दिखाया कि कैसे वहां के वो स्वामी बने। फिर देवकी के जो 6 पुत्र जो कंस ने मारे थे, वो भी बलि महाराज का जो सुतल लोक है वहां पर थे, वो भी नीचे पाताल लोकों में आता है सुतल लोक। तो जब भगवान बलि महाराज के सुतल लोक में गए तो बलि महाराज ने पूरे देवकी के 6 पुत्रों को ला कर दिया और फिर भगवान उनको लेकर आए। और अजामिल का जो उद्धार है, इससे भी भगवान ने स्थापित किया कि कैसे वो यमलोक के स्वामी हैं, कि यमदूत वहां पर आए ले जाने के लिए अजामिल की आत्मा को। और भगवान का एक नाम नारायण, एक नाम ने, भगवान के एक नाम ने अजामिल को यमलोक से, यम यातना से बचा लिया। तो इन 3 उदाहरणों के द्वारा समझ में आ रहा है कि भगवान कैसे पाताल लोक के भी स्वामी। तो इसलिए भगवान त्रिशु लोकेशु किंचन ये कह रहे हैं भगवान, कि मैं 3 लोकों का जो मैं स्वामी हूं, मेरे लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं, मैं कहीं पर भी जाकर कुछ भी कर सकता हूं 3 लोकों में। परंतु फिर भी वो ऐश्वर्यशाली भगवान जब दामोदर लीला में जो पूर्णतम कृष्ण है, कौन से वृंदावन के कौन से कृष्ण है, पूर्णतम कृष्ण आत्मा राम आप्त काम, पूर्णतम कृष्ण जो हैं त्रिशु लोकेशु के जो स्वामी हैं, वो भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के सामने अपनी अपूर्णता दिखा रहे हैं। तो भगवान जब अपनी अपूर्णता दिखाते हैं तो वो किस लिए दिखाते हैं, माता यशोदा का प्रेम, ब्रजवासियों का प्रेम और प्राप्त करने के लिए। तो देखिए आज का जो श्लोक है, आज के श्लोक को यदि हम पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला के संदर्भ में समझें, विशेष रूप से दामोदर लीला में, तो ये समझ में आता है कि भगवान जो भी कुछ करते हैं, चाहे यहां पर करें चाहे गोलोक वृंदावन में करें, भगवान जो कुछ करते हैं वो अपनी स्वेच्छा से करते हैं, उनके ऊपर किसी भी चीज का कोई बंधन नहीं। प फ ब भ म, ये 5 का बंधन है और हम जो कुछ करते हैं ये 5 के अंदर, इसको पवर्ग जो कहते हैं। तो पहला ऐश्वर्य भगवान ने जिसका परित्याग किया दामोदर लीला में, कि दिवाली के दिन भगवान भूखे हुए, अपने माता का स्तनपान करने के लिए भूखे हुए। तो आत्माराम का अर्थ क्या है, कि जो सेल्फ सफिशिएंट हो। तो यदि वो आत्माराम सेल्फ सफिशिएंट है तो क्या वो अपने अंदर से अगर ब्रह्मा जी का उत्पादन कर सकते हैं, अगर बछड़ों का उत्पादन कर सकते हैं, तो क्या आधा लीटर दूध का उत्पादन नहीं कर सकते? तो क्यों दिवाली के दिन भगवान माता यशोदा का दूध चाहते थे? क्योंकि भगवान देवताओं को दिखाना चाहते थे कि माता यशोदा का जो दूध है वो उनकी भक्ति, उनका प्रेम है, और मुझे उनका प्रेम वो चखना है, उसका आस्वादन करना। तो भगवान ने अपने आत्माराम होने का जो पद है उसका परित्याग किया। कैसे? माता यशोदा के स्तनपान की कामना कर कर। अब माता यशोदा भगवान को ली अपनी गोद में, छोटे से नन्हे से भगवान, और वो अपना स्तनपान करा रही। और फिर हम जानते हैं इस कथा में कि दूध उबल रहा था रसोई में, तो माता यशोदा ने भगवान को नीचे रखा दूध को संभालने के लिए। और भगवान जो कि आप्तकाम का एक और अर्थ है कि थोड़े से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ी मात्रा में भगवान को देकर संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती भक्तों को, लेकिन यहां भगवान थोड़े से दूध से संतुष्ट नहीं हुए, भगवान को और चाहिए था माता यशोदा का दूध। तो भगवान माता यशोदा को ये बोल रहे थे कि अरे मैं एक क्षीर सागर छोड़ के आया और तुम ये एक किलो दूध के पीछे भाग रहे हो। तो भगवान जो कि आप्त काम है, भगवान की कामना और बढ़ने लगी माता यशोदा के दूध के लिए। और इतना ही नहीं, भगवान गुस्सा हुए, क्रोधित हुए भगवान। तो एक और भगवान का पद क्या है? त्रिगुणातीत। क्रोध जो है गुणों के अधीन आता है, रजोगुण तमोगुण के अधीन है क्रोध। तो भगवान जो क्रोधित हुए किस लिए? माता यशोदा के ऊपर कि मुझे छोड़कर चली गई। तो उस क्रोध के द्वारा भगवान ने त्रिगुणातीत होने का जो पद है उसका परित्याग किया। फिर आगे इतना ही नहीं, अब भगवान चोरी करने लगे अपने घर में कि माता यशोदा को मैं सबक सिखाऊंगा, अब मैं अपने घर में आज चोरी करूंगा। तो मटकों को फोड़कर, अब माता यशोदा रसोई में, यहां पर भगवान मटकों को फोड़कर वहां पर चोरी कर बंदरों को खिलाने लगे। तो भगवान ने अपना कौन सा पद परित्याग किया? लक्ष्मीपति होने का, कि जो सहस्त्र लक्ष्मियों के पति हैं वो अपने ही घर में माखन की चोरी कर रहे हैं। उसके पश्चात जब माता यशोदा बाहर आकर भगवान को देखती है कि ये सब कारनामे उन्होंने किए हैं, तो माता यशोदा भागना शुरू करती हैं। और ये जो भगवान अजित हैं, जिनको बड़े बड़े योगी जीत नहीं सकते, माता यशोदा एक गृहिणी, एक ग्वालन, वो भगवान को पकड़ ली भागते भागते। तो भगवान ने अपने अजित होने का जो पद है उसका परित्याग किया माता यशोदा के द्वारा पकड़वा कर। फिर इतना ही नहीं, माता यशोदा ने जो छड़ी हाथ में ली तो जो भगवान अभयेंद्र, उनका एक पद है कि जो अभय के इंद्र हैं, दूसरों को अभय प्रदान करते हैं, वो भयभीत हुए माता यशोदा के सामने। तो उन्होंने अपना ये पद, छठा पद, इसका परित्याग किया। और भगवान जो कि मुक्ताय हैं, जिनको कोई बांध नहीं सकता, जो कि बाधित नहीं है, माता यशोदा ने उखल से बांध दिया। तो ये उनका सातवां पद ऐश्वर्य। और आठवां, जो भगवान मुकुंद दूसरों को मुक्ति प्रदान करते हैं वो खुद मुक्त नहीं हो पा रहे थे। तो इन आठों ऐश्वर्यों के द्वारा, जिसका परित्याग भगवान दामोदर ने किया, भगवान ये बता रहे हैं कि मैं पूर्णतम रूप में जो वृंदावन में लीला मैंने की, उसमें भी मैंने अपने ऐश्वर्यों का परित्याग किया। किस लिए? ताकि मैं अपने भक्तों का प्रेम, उसका आस्वादन कर सकूं। और आज के श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने सारे ऐश्वर्यों का परित्याग करता हूं जब मैं वृंदावन के बाहर आता हूं, क्यों? ताकि हम सब सही राह पर आए। वृंदावन में क्यों परित्याग करते हैं? ब्रजवासियों के साथ आदान प्रदान करने के लिए। यहां पर उनका परित्याग कर वो हमारी तरह कर्तव्य करते हैं हमें सिखाने के लिए। इसलिए आज के श्लोक में ये जो महत्वपूर्ण लाइन भगवान ने कही है, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम। तो भगवान ने कर्तव्य की विशेष परिभाषा दी है आज के श्लोक। क्या कर्तव्य की विशेष परिभाषा? कि कर्तव्य जो है वो व्यक्ति दो वजह से करता है, किसी भी कर्तव्य का पालन, आवश्यकता के वजह से और विवशता के वजह से। कि यदि कोई किसी पद पर है तो अपना कर्तव्य निभा रहा है, चाहे वो माता पिता के पद पर हो, चाहे वो शिक्षक के पद पर हो, नेता के पद पर हो, किसी भी पद पर हो, तो वो उस पद पर जो कर्तव्य का पालन कर रहा है वो आवश्यकता के वजह से और विवशता के वजह से कर रहा है। परंतु भगवान आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं कि मैं इसके बावजूद जो कर्म करता हूं, जो कर्तव्य निभाता हूं, कि कोई मुझे आवश्यकता नहीं है किसी को खुश करने की। कई बार लोग कर्तव्य करते हैं दूसरों को खुश करने के लिए, या जो उनको पोस्ट मिली है, जैसे अगर कोई प्रधानमंत्री बना है, राष्ट्रपति बना है, तो वो जो कर्तव्य निभा रहा है, क्यों निभा रहा है? अगर नहीं निभाएगा तो कुर्सी चली जाएगी। परंतु यहां पर भगवान को कोई डर नहीं है कि यदि मैं बार बार आऊंगा नहीं यहां पर भौतिक संसार में तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। कौन सी कुर्सी? भगवत्ता की कुर्सी। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं भगवान को, कोई विवश नहीं कर रहा है। उसके बावजूद जब कुछ कोई करता है तो उसकी महानता उसमें दिखती है। तो अब एक बहुत ही सुंदर व्याख्या महाभारत में की गई है, जिसका कनेक्शन आज के श्लोक में जो भगवान अर्जुन को प्रथा पुत्र कह रहे हैं उससे। प्रथा कुंती महारानी का नाम, तो प्रथा पुत्र हुए कुंती पुत्र अर्जुन। और प्रथा या कुंती देवी वो भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी कुंती, तो भगवान श्री कृष्ण की बुआ हुई। तो अर्जुन इस प्रकार से भगवान से कनेक्टेड था। तो यहां पर भगवान बोल रहे हैं कि देखो तुम प्रथा के पुत्र हो और मैं वही प्रथा जो मेरी बुआ है मैं कर्म कर रहा हूं, तो तुम क्यों नहीं करोगे? हम दोनों रिलेटेड हैं फैमिली वाइज। और फिर महाभारत में इसकी व्याख्या हुई है कि जब अर्जुन के पोते परीक्षित, अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, जिनको मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। किसको मारने के लिए? परीक्षित को मारने के लिए। तो परीक्षित को मारने के लिए जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने, तो कहां छोड़ा था? उत्तरा के गर्भ में, क्योंकि परीक्षित पैदा नहीं हुए थे, उत्तरा के गर्भ में थे। तो उत्तरा वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाती हैं रोती हुई, भगवान श्री कृष्ण को याचना करती हैं कि मेरे गर्भ को बचाइए। तो भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं, वही भगवान जो कि देवकी के गर्भ में प्रवेश कर देवकी पुत्र बने, अब उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं परीक्षित की रक्षा करने के लिए। लेकिन महाभारत में अश्वमेधिक पर्व है, वहां पर बताया है कि जब भगवान प्रवेश किए परीक्षित मर चुके थे, परीक्षित मर चुके थे तब तक। तो वहां पर भगवान लेट पहुंचे। तो आपको ये प्रश्न पूछ सकता है कि भाई भगवान लेट कैसे पहुंच सकते हैं? तो परीक्षित मर चुके थे, और जब मरे हुए परीक्षित को जब भगवान ने देखा गर्भ में, तो भगवान ने यहां विधाता से कहा कि मैंने अपने जीवन में जितने सत्कर्म पुण्य दान धर्म जो कुछ किया है उसके बलबूते पर परीक्षित को पुनः जीवित की करो। भगवान ने वहां पर अपनी भगवत्ता से जीवित नहीं कराया परीक्षित को, ये बात ध्यान में रखना, बहुत ही इंटीमेट है ये, भगवान ने अपनी भगवत्ता से परीक्षित को जीवित नहीं करवाया, करा सकते थे भगवान, भगवान है क्यों नहीं, परंतु भगवान ने परीक्षित को जीवित कराया। एक एक भगवान विधाता, विधाता कौन है, ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी को जिन जो विमोहित हो गए थे भगवान को देखकर, उन्हीं ब्रह्मा जी को भगवान प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं, सबसे पहले वो कहते हैं कि मैंने मेरे जीवन में जितना सत्य वचन कहा है उसका श्रेय इस परीक्षित को दो। और भगवान का सत्य वचन क्या है, ये पूरा वेद, सारा वेद भगवान ने अपने श्रीमुख से ब्रह्मा जी को सुनाया, जो कि परम सत्य वचन है। तो भगवान कह रहे हैं मैंने अपने जीवन में यदि सत्य वचन जितने भी कहे होंगे तो उसका क्रेडिट इस परीक्षित को दो। फिर भगवान कह रहे हैं कि मुझे जो पद मिला है अनघ होने का, अनघ का अर्थ है सिनलेस, जिसके अंदर लेश मात्र भी पाप नहीं, अघ नहीं, वो है अनघ। तो मैंने अपने जीवन में एक भी पाप कभी नहीं किया तो उसका जो श्रेय है वो इस परीक्षित को दो। फिर आगे वो कहते हैं कि पूतना मुझे मारने आई और पूतना ने विश्वासघात किया, क्योंकि वो भेष बदल कर आई थी, मेरी माता का रूप लेकर आई थी मुझे स्तनपान कराने, परंतु मैंने उसके साथ विश्वासघात नहीं किया, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया लेकिन मैंने पूतना के साथ विश्वासघात नहीं किया। जितने राक्षस मुझे मारने आए वो सब भेष बदल कर आए मुझे मारने के लिए, उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया लेकिन मैंने किसी भी राक्षस को मारा नहीं, उनका उद्धार किया, उनको मुक्ति दिलाई। तो क्योंकि मैंने अपने जीवन में किसी के साथ कभी विश्वासघात नहीं किया है तो हे विधाता उसका जो परिणाम है इस परीक्षित को दो। फिर भगवान आगे कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में जितने धर्म के आचरण किए होंगे वो सारे धार्मिक, अब भगवान धर्म की स्थापना करते हैं, सोचिए कि भगवान विधाता से बोल रहे हैं कि मैंने जितने धार्मिक आचरण किए उसका फल इस परीक्षित को दो, मैंने जितनी गौ सेवा मेरे जीवन में की वो सारी गौ सेवा का फल इस परीक्षित को दो हे विधाता, मैंने जितने सत्कर्म किए होंगे वो सारे सत्कर्मों का परिणाम इस परीक्षित को मिलना चाहिए, मैंने जितनी दान दक्षिणा दी होगी वो सारे दान दक्षिणा का परिणाम इस परीक्षित को मिलना चाहिए। और अंत में भगवान विधाता से कहते हैं कि जितने बद्ध जीवों को मुक्ति दिलाकर मैं अपने भगवत धाम लेकर आया हूं उन सब की प्रार्थनाएं, उन सब की दुआएं इस परीक्षित को मिलनी चाहिए। और जब भगवान ने ये सब कुछ कहा, इतना सब कुछ, तो परीक्षित हिलने लगे, परीक्षित में पुनः जान आई, जीवन आया और परीक्षित पुनः जीवित हो गए। बोलो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की। तो भगवान यहां पर ये दिखाना चाहते थे कि मैं हालांकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं, मेरे अंदर सारी शक्ति है किसी को भी मारने की और किसी को भी पुनर्जीवित करने की, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, मेरे अंदर पूरी शक्ति है। परंतु भगवान महाभारत के इस प्रसंग से सिखाए कि मैं ये दिखाना चाहता हूं पूरे जन समुदाय में कि जो कुछ मैंने पुण्य, सत्कर्म, सत्य वचन, गो सेवा इत्यादि मैंने जो की, उसके परिणाम मैं एक ऐसे व्यक्ति को देना चाहता हूं जो आगे चलकर इतना बड़ा श्रेष्ठ, इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा लीडर बनने वाला है। कौन है वो? परीक्षित। तो भगवान प्रथापुत्र कह रहे हैं कि हे प्रथापुत्र, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे आगे चलने वाले जो पोते होने वाले हैं उनके लिए मैं अपना सारा कर्मों का परिणाम दे रहा हूं, कर अपने कर्मों को कर कर्तव्यों को कर मैं उनको पूरा श्रेय दे रहा हूं, तो तुम क्यों नहीं करोगे? जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कर रहा हूं तो तुम क्यों नहीं करोगे? तो अर्जुन ने जब ये सुना कि भगवान ने अर्जुन को प्रथा पुत्र इसलिए पुकारा है, तब अर्जुन के अब रोंगटे खड़े हो गए और अर्जुन व्याकुल हो गए। वही अर्जुन जो प्रथम अध्याय में व्याकुल हो रहे थे अपने सगे संबंधियों को देखते हुए, अब अर्जुन भगवान के ऐसे वाक्य को सुनकर व्याकुल हुए कि भगवान ने श्रेष्ठों के विषय में जो कहा है, आचार्यों के विषय में जो कहा है, वो भगवान अपने विषय में बता रहे हैं कि वो कैसे उदाहरण प्रस्थापित किए हैं। और भगवान इसी श्लोक के संदर्भ में अब आगे के दो श्लोक अपना ही उदाहरण देते हुए अर्जुन को और आगे समझाएंगे कि अर्जुन ये मत समझो कि मैं जो तुमको बोल रहा हूं मैं उसका पालन नहीं कर रहा, मैं यदि पालन कर रहा हूं तो अर्जुन तुम्हें कितना इसका पालन करना है। और अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं और हम सबको, मनुष्य वही है जो श्री कृष्ण के मार्ग पर चले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण राम हरे राम राम राम। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।